देखते हैं तफसीर सूरत आले इमरान।
कुल कह दीजिए, ए नबी आप भी कह दें। और उसमें सूरह बकरा में क्या आया था, कुलू तुम सब कह दो, वो यही वाले बातें कहलाई गई थी। और यहाँ पे कुल ए नबी आप कह दे रहे, आपको कहने के बाद आपकी उम्मत के लिए भी यही है। और यही है जो हर एक इंसान के लिए, मुसलमान होने के लिए जरूरी है कि वो इन बातों पे ईमान लेकर आए, हर एक के लिए। आमन्ना बिल्ला, हम ईमान लाए अल्लाह पर। वमा उन्जिला अलैना, और जो हम पर नाजिल हुआ, हम पे क्या नाजिल हुआ, कुरान और सुन्नत। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वमा यंतिकु अनिल हवा, अपनी ख्वाहिश नफ्स से नहीं बातें करते थे, आपके पास जो वही आती थी उसके मुताबिक बताते थे। नहीं कि आपका कोई दिल चाह रहा है तो आप, अल्लाह ताला ने खुद कुरान पाक में सूरह नजम में ये गवाही दी है कि मेरा नबी ऐसे ही अपनी अपने जो दिल किया वो बोलता रहा, ऐसे नहीं करते थे। तो हम उस पे भी ईमान लाए क्योंकि वो भी अल्लाह ही की तरफ से, जो इतना कुछ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया वो सब अल्लाह की तरफ से। वो हदीस जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें बताते हैं वो आपकी मनपसंद बातें नहीं है, वो अल्लाह ही की तरफ से आई हुई है आपके पास। तो कुरान को भी हम मानते हैं, हदीस को भी हम मानते हैं। व मा उन्जिला अला इब्राहिम व इस्माइल व इसहाका व याकूब व असबात, और जो कुछ भी इब्राहिम अलैहिस्सलाम पे, इस्माइल अलैहिस्सलाम पे, इसहाक अलैहिस्सलाम, याकूब अलैहिस्सलाम और आले याकूब। आले याकूब में कौन आ गए, यानी जितने कबाइल में याकूब अलैहिस्सलाम के, मैंने आपको बताया था ना इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटों में ही, उनकी औलाद में ही आगे नबूवत चली है। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम आ गए उसके बाद आउट ऑफ हिज प्रोजेनी, उनकी जुरियत के बाहर किसी को नबी नहीं बनाया गया, यानी उनके उनसे पहले जो नबी है जाहिर बात है वो तो पिछले थे ना, उनके बाद नबूवत का सिलसिला सिर्फ उनकी नस्ल में ही चला। और उनकी नस्ल में इसहाक अलैहिस्सलाम की औलाद में बहुत सारे पैगंबर आए हैं, और इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में सिर्फ नबी अलैहिस्सलाम आए। तो अब जो इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे थे याकूब अलैहिस्सलाम, उनके आगे जो बेटे थे 12 बेटे थे, उनकी औलाद से बहुत से पैगंबर आए। मसलन आप देख लें, अब यहया अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, दाऊद अलैहिस्सलाम, सुलेमान अलैहिस्सलाम, यूशा अलैहिस्सलाम, तो बहुत सारे पैगंबर हैं। अब ये जो सारे पैगंबर हैं इनके ऊपर भी जो उतरा हम उस पर ही मान लें। अब हमें क्या पता इस्माइल अलैहिस्सलाम पे क्या उतरा, आज तो नहीं मौजूद है। इसहाक अलैहिस्सलाम पे क्या उतरा हमें तो नहीं पता है। सुहूफ इब्राहिम जिनको कहा जाता है, कुरान में मेंशन किया गया, हमें तो नहीं पता है वो कहाँ, हमने उनको तो नहीं देखा। लेकिन हम ये मानते हैं, ईमान लाने का मतलब क्या, हम ये मानते हैं जो भी उनके ऊपर उतरा था वो हक था, वो अल्लाह की तरफ से था, क्योंकि वो अल्लाह के सच्चे नबी हैं, उन्होंने खुद नहीं बातें बनाई, उनके पर जो आया अल्लाह की तरफ से आया था। हम मानते हैं चीज को, यानी हम उनको भी नबी मानते हैं, क्योंकि जिसके पर वही उतरती है वो नबी होता है, तो हम उनको नबी मानते हैं। वा मा ऊतिया मूसा व ईसा, और जो भी दिए गए मूसा अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम, ऊतिया मूसा अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम के लिए आया, और उन्जिला आया बाकियों के लिए। क्यों, इसलिए कि ऊतिया के अंदर फिर हम ना सिर्फ जो उनके पर नाजिल हुआ किताबें, और इसके अलावा जो मुजजात भी उनको दिए गए हम उनको भी मानते हैं, जो भी उनको दिया गया। वन नबी यून अमीर रबीम, और जो तमाम नबी अल्लाह की तरफ से आए उनके ऊपर जो भी उतरा, 1,24,000 अंबिया आए, सब के ऊपर जो भी उतरा हम सब को मानते हैं। ला नुफर्रिकु बैना आदिम मिनहुम, हम इनमें से किसी में भी कोई फर्क करते ही नहीं। तुम फर्क करते हो ए अहले किताब, तुम यहूदी हो, तुम किसी को मानते हो और किसी को नहीं मानते। मूसा अलैहिस्सलाम को माना, ईसा अलैहिस्सलाम का इनकार कर दिया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार कर दिया। ईसाइयों तुमने भी औरों को मान लिया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार कर दिया। लेकिन हम देखो, वो कहते ना कि ये मुसलमान ऐसे हैं, ये रेसिस्ट हैं, ये डिस्क्रिमिनेट करते हैं, वो डिस्क्रिमिनेट तो सबसे ज्यादा तुम करते हो। मुसलमान तो सारे पैगंबरों को मानता है, वो तो किसी में फर्क ही नहीं करता। हमने जितना ही इज्जत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की करनी है उसी तरह ईसा अलैहिस्सलाम की करनी है। इसी वजह से जब इन्होंने जो कार्टून बनाए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो शान में गुस्ताखियां की, हम नहीं कभी कर सकते कि हम उसी तरह शुरू कर देंगे, हम ईसा अलैहिस्सलाम के लिए करें। हम नहीं ये कर सकते कि हम इसी तरह कोई बात मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में कोई कह दे, नहीं, क्योंकि हम सब को इज्जत करते हैं, हमारे लिए सब उसी तरह काबिल एहतराम है जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम उनको भी उतना ही सच्चा समझते हैं जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को समझते हैं। तो मुसलमान कितना ज्यादा इंसाफ पसंद है, और वो देखोगे वो तो यूनिवर्सली सबको मानता है, और तुम लोग क्या करते हो। हाँ ये अलग बात है कि अल्लाह ताला ने जो दिल का रसूल फदलना बाद मुलाबाद, अल्लाह ताला ने जो फजीलत दी बाद रसूलों को बाज के ऊपर, वो अल्लाह ने जो फजीलत दी है, इस बारे का शुरू होता है ना, वो अल्लाह ताला ने जो उनके दर्जात में फजीलत रखी है, लेकिन मानने में कि ये नबी हैं और अल्लाह के सच्चे नबी हैं, इनमें हम सबको बराबर समझते हैं। ठीक है, वनहनु लहू मुस्लिमून, और हम वास्ते उसके, वास्ते किसके, हु की जमीर किस तरफ जा रही है, सबसे पहली बात क्या कही गई, आमन्ना बिल्ला, तो हम हु की जमीर अल्लाह की तरफ जा रही, हम लिए उसके मुस्लिमून, हम फरमा बरदार हैं। फरमा बरदारी सिर्फ अल्लाह ही की है, बाकी जितने भी रिश्ते नाते कानून, चाहे मुल्कों के हों चाहे कहीं के हों, सब के सब इसके अंडर आएंगे, इससे ऊपर नहीं जा सकते, इससे ऊपर नहीं जा सकते, इसके नीचे ही रहेंगे। माँ बाप की फरमा बरदारी होगी तो अल्लाह ताला की इताअत के अंडर ही होगी, ये नहीं कि माँ बाप का हुक्म मानते मानते अल्लाह के हुक्म तोड़ दे कि नहीं जी माँ बाप कह रहे हैं, नहीं, फरमा बरदारी सिर्फ अल्लाह की, हम उसके आगे सरे तस्लीम खम करते हैं, हम अपने आप को उसके आगे झुका देते हैं। क्या तो कितनी प्यारी बात अल्लाह ताला ने हमें सिखा दी कि आपने तो ये कहना, वमई अब तगी गैर इस्लामी दीनन, और जो कोई चाहेगा ना, अब इसी का जवाब है, देखें ये जो आपको पहले बात पूछी गई ना, अफ गैरा दीन अल्लाह ही अबगून, अब क्या इंसान जवाब देगा, वो जो भी जवाब दे कि जीना मरना सब में मैं, कोई खुशी है गमी है सब में, क्या तुम अल्लाह के दीन के अलावा अपने लिए कुछ और चाहते हो। अच्छा अब इसका एक तरह से एक वार्निंग बताई जा रही, तो वह मई अब तक ही गैर इस्लामी दीन है, और जो कोई भी इस्लाम के अलावा दीन लेकर आएगा ना, कोई वे ऑफ लाइफ, कोई तरीका जिंदगी, कोई और कानून, कोई और तरीके, फलई युक्बल मिन्हु, तो हरगिज उससे कबूल नहीं किया जाएगा, वह हुआ फिल आखरत ही मिनल खासिरीन, और वो आखरत में नुकसान उठाने वालों में से होगा। कबूल नहीं किया जाएगा मतलब क्या है, वो रिजेक्टेड है, मरदूद है। अच्छा इसमें सबसे पहले तो जब जैसे हम देखते हैं कि एज रिलीजन अगर कोई इस्लाम के अलावा दीन को लेकर आता है, चाहे वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले के अदियान में से कोई दीन है, मसलन है शिर्क, ये जो बुत परस्ती है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी पहले का दीन का मजहब है, अब आज उसको हिंदू कहलाएं लेकिन पहले वक्त में हिंदू नहीं थे लेकिन बुत परस्त तो थे। अच्छा चाहे वो क्रिश्चियनिटी है, चाहे वो जूडिज्म है, चाहे वो कोई भी और मजहब है, लेकिन अब जब इस्लाम आ गया, अल्लाह ताला ने इस्लाम को तुम्हारे लिए पसंद कर दिया, सूरह मायदा में है ना, अलयौम अकमलतु लकुम दीनकुम वअतममतु अलैकुम नियमती वरदीतु लकुम अलइस्लाम दीना, अल्लाह ने तुम्हारे लिए पसंद कर लिया इस्लाम को दीन के तौर पे, तुम्हारे लिए दीन इस्लाम को मुकम्मल कर दिया। अकमलतु का मतलब क्या, मुकम्मल करने का मतलब क्या, किसी चीज में पहले कोई कमी होती है तो उस कमी को पूरा कर दिया जाए, ये है अकमलतु, मैंने मुकम्मल कर दी, पहले जो कमी थी उसके बाद मुकम्मल कर दी। और अतममतु का मतलब क्या, ये भी क्या मुकम्मल करना हुआ, तो फिर दोनों में क्या फर्क है, नहीं अतममतु का मतलब ये है कि एक सिलसिला जारी था, अब वो एक जगह पे आके रुक गया, तमाम हो गया, बस इसके बाद आगे नहीं जारी होगा, यानी अब दीन शुरू हुआ था आदम अलैहिस्सलाम से, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे आके मुकम्मल हो गया, अब ना इसके अंदर कोई एंट्री होगी ना इसके अंदर से कोई चीज निकल सकती, अब दैट्स इट, अब लॉक हो गया यहां पे, तो अब इसमें कोई एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं है। तो अब कोई पहले के अध्ययन में से कोई लेकर आए, या फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने के बाद कोई दीन मतलब नए नए पॉप अप करते हैं, कोई मिसाल के तौर पे सेक्युलरिज्म है, लिबरलिज्म है, एथिज्म शायद पहले भी होता होगा लेकिन जितना आज है उससे ज्यादा नहीं था पहले, एथिज्म है और जो भी नाम ले लें, नए नए तरीके, नए नए अधियान इंट्रोड्यूस हो गए आज तो वो भी है, उनको पता नहीं उनको नाम क्या देते हैं, मगर वो जो सैटन वर्शिपर्स हैं, शैतान के पुजारी, उनका भी कोई एक नाम है, लेकिन वो भी एक, उन्होंने अपना भी मजहब बनाया हुआ है, तो वो भी एक मजहब है जिसको वो पूजते हैं। तो जो मजहब भी है, इस्लाम से पहले का है या बाद का है, लेकिन अगर इस्लाम आने के बाद कोई उसको फॉलो करता है, उस दीन को लेकर आता है, उसको तलाश करता है, उसको चाहता है, उसको अपनाता है, फलाइयो कबला में, तो उसे एक्सेप्ट ही नहीं होगा क्यामत के दिन। क्यामत के दिन वो अल्लाह ताला एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे उसका दीन, तो फिर आगे क्या बात होगी। देखिए आपको ये बात ना अच्छी तरह इससे समझ आ जाएगी, एक हदीस से, मुस्नद अहमद में ये हदीस है, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि क्यामत के दिन आमाल हाजिर होंगे, नमाज आके कहेगी अल्लाह मैं नमाज हूँ। देखिए इसका मतलब है कि आमाल की शक्लें होंगी, उनकी कोई फॉर्म्स होंगी, कोई शेप्स होंगी, वो आके बोलेंगे भी आमाल, अल्लाह मैं नमाज हूँ। अल्लाह ताला फरमाएगा तू अच्छी चीज है। सदका आके कहेगा अल्लाह मैं सदका हूँ, तो अल्लाह ताला फरमाएगा तू भी खैर पे है। रोजा आके कहेगा अल्लाह मैं रोजा हूँ, अल्लाह ताला फरमाएगा तू भी बेहतरी पे है। फिर इस तरह और भी आमाल आते जाएंगे और सबको अल्लाह ताला यही जवाब देंगे, फिर इस्लाम हाजिर होगा, वो सबसे बड़ी चीज, वो कहेगा अल्लाह अंत सलाम, तू सलाम है और मैं इस्लाम हूं। अल्लाह ताला फरमाएगा तू खैर पे है, आज तेरे ही असूलों पे सबके फैसले होंगे, सबके जो रिजल्ट होंगे ना वो इसकी बेस पे होंगे, फिर सजा ये मैं दूंगा किसी को या इनाम दूंगा, यानी तेरे इस क्राइटेरिया के ऊपर सबको जांचा जाएगा। इस्लाम है जब इस्लाम आ गया, इस्लाम से पहले तो जाहिर है जब इस्लाम नहीं आया था तो जिन ईसा अलैहि सलाम पर ईमान लाए वो ईसाई, जो जैसे हवारियों का यहाँ पे जिक्र है, तो वो सच्चे थे, वो तो इस्लाम आया ही नहीं था, अपने अपने वक्त के अपने जमाने के नबी के ऊपर ईमान लेकर आए। इसी तरह मूसा अलैहि सलाम के फॉलोअर्स जो सच्चे पक्के थे वो उनके साथ जो लगे रहे और वो ठीक थे अपने जमाने, लेकिन जब इस्लाम आ गया इसके बाद कोई ये समझे कि अब वो जी वो तो इतने अच्छे काम करते हैं, उनके अंदर क्या बुराई है, वो तो हमसे ज्यादा अच्छे काम करते हैं, मुसलमान क्या करते होंगे, वो तो इतने अस्पताल बनाते हैं, इतने खिदमते खल्क करते हैं, क्या हो गया अगर मुसलमान नहीं है तो, आप लोग इतने रिजिड हो जाते हो, नहीं जी इस्लाम ही मुसलमान ही होना चाहिए, जैसे कि पता नहीं मुसलमानों ने ही सिर्फ जन्नत में जाना, ये क्या बात हुई, सुनी आपने ऐसी बातें कभी। अभी पिछले दिनों किसी ने मुझे एक भेजी, एक वीडियो भेजी थी, और उसके अंदर मैं हैरान हूं वैसे ना कि कोई एक माशाल्लाह हमारे सियासतदान है, वो पार्लियामेंट में खड़े हुए कह रहे हैं किसी दीन को किसी के ऊपर फौकियत हासिल नहीं है, किसी दीन को किसी पे फौकियत हासिल नहीं है। और मैं इतनी हैरान हुई कि ये कभी कुरान खोल के तो देख लेते कि व मैं यबतगी गैर इस्लाम दीन फलन युक्बल मिन्हु, ये तो सब रिजेक्टेड है, सबको अल्लाह ताला ने, कोई भी वो दीन है अब चाहे वो इल्हामी दीन ही क्यों ना हो, यानी अल्लाह की तरफ से आया हुआ दीन ही था ये, जिसको नाम उन्होंने अब यहूदियत दे दिया या ईसाइयत दे दिया, थे तो वो भी इस्लाम ही, लेकिन चाहे वो ही क्यों ना हो, सबको अल्लाह ताला ने फरमा दिया सब रिजेक्ट होंगे, सिर्फ इस्लाम होगा कि जो अल्लाह ने पसंद कर दिया तुम्हारे लिए कयामत तक के लिए। मैंने आपको बताया सूरह मायदा आप खोल लें आपको ये आयत मिल जाएगी, तुम्हारे लिए अल्लाह ताला ने इस्लाम को चूज कर लिया, अब इसके बाद कोई और दीन नहीं है, किसी में निजात नहीं मिलेगी, और हमारे मुसलमान साहब खड़े होकर कह रहे हैं कि किसी को किसी दीन को किसी के ऊपर फौकियत हासिल ही नहीं, खुदा के बंदो तो फिर आप मुसलमान क्यों हैं, वो ये क्या इन्होंने प्रचार करने अपने दीन के, क्या ये दूसरों को कन्विंस करेंगे जो ये कहने शुरू हो जाएं कि किसी दीन को किसी पर फौकियत ही हासिल नहीं है, ये क्या किसी को बताएंगे, तो फिर इसका मतलब सारे ही अच्छे हो गए ना, जब फौकियत ही नहीं हासिल तो सारे बराबर हो गए, फिर इस्लाम में क्या कमाल रह गया, फिर इस्लाम कोई क्यों लाए, आपने तो सब कह दिए कि सब ठीक है, फौकियत है ही नहीं, हालांकि कुरान कहता है कि इस्लाम को फौकियत है, तो ये आज हमारे हाल हो गए हैं, हम कहते हैं ना 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 किसी को ना कहो कि कोई गलत है, सब ठीक है, आप भी ठीक है हम भी ठीक है, सबको खुश करके रखो, पता नहीं हमारी असल में बात ये, हमारे पता नहीं ईमानी गैरत किधर चली गई है, मर गई है, नहीं रही अब। इसलिए तो हम खड़े होकर कहते हैं कि नहीं कोई किसी की फजीलत ही नहीं, बस सब ठीक हो गए। क्या गैरत है तुम्हारी फिर, वो जो बुत शिकन थे तुम्हारे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को भेजा था कि जाओ सारे बुतों को और सारी ऊंची कब्रों को भी फ्लैट कर दो, सब खत्म, अब सब ठीक है, अब बुत परस्त भी ठीक है, अब सब ठीक है, जो खुदा का बेटा कहते हैं ईसा अलैहि सलाम को वो भी ठीक हो गए, फौकियत तो है ही नहीं इस्लाम को, तो फिर क्या। तो ये साफ अल्लाह ताला फरमा रहे हैं देखो, फलई युकबला मिनहु, और ऐसे लोग आखरत में भी खसारा पाने वाले होंगे क्योंकि वो इस्लाम नहीं लेकर आए। इसका मतलब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने के बाद अब कोई नहीं मानता तो वो खसारा उठाएगा। इसी तरह ये सिर्फ गैर मुस्लिमों के लिए नहीं है, ये जो हम अपने है ना बड़ी हम वकालत करते हैं, एक जगह पे तो किसी ने बाकायदा बहस शुरू कर दी, उन्होंने कहा आप कैसे कह सकते हैं कि जी ये जो इस वक्त क्रिश्चियन है या इस वक्त वो है कि ये सारे मतलब है कि इनका कोई ये काफिर है या ये इनका, अगर ये इसी के ऊपर मर जाते हैं तो जहन्नुम है, ये आप कैसे कह सकते हैं, वो इतने नाइस हैं कि बस। तो हमने क्या कहना, कुरान कह रहा है आखरत में खसारा, क्या है आखरत का खसारा, जहन्नुम है। तो एक तो गैर मुस्लिमों के लिए हो गया, दूसरा मुसलमानों तुम भी कान खोल के सुन लो, तुम जो ये समझते हो ना कि अल्लाह का जो दिया हुआ दीन है वो छोड़ के नई नई चीजें ईजाद करके लाओगे, नई में बड़ा बड़ी अट्रैक्शन होती है ना, नई नई चीजें बनाओगे भाई ऐसे कर लें ऐसे कर लें, तो वो नहीं अल्लाह को कबूल होना। दीन सिर्फ वो है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए और खत्म हो गया वहां पे, वहीं पे मुकम्मल हो गया, सील समझने लग गया, खातमुल अंबिया है ना, सील है, सील लग गई है, अब मोहर लग गई है, अब कोई चीज इसमें ऐड नहीं हो सकती। इससे पता चला कि ये जो बिदात हमने खुद ही नए नए तरीके ईजाद कर लेते हैं ना, ये इनकी कोई गुंजाइश नहीं है, इस्लाम के अलावा कोई रास्ता, दीन कोई रास्ता, कोई इस्लाम के अलावा कोई तरीका खुद ही ईजाद कर लेना और ये कहना कि हाँ इसमें सवाब है, आपको किसने परमिशन दी कि आप कहें इसमें सवाब है? आपने कहीं से सुना इसमें इतना सवाब है, इसमें 1 लाख है, इसमें फलाने इतने हजार है, ऐसे करोगे तो ये हो जाएगा, वैसे करोगे तो वो हो जाएगा, खुद ही और तरीके खुद ही बना लिए वे, जो चीजें कहीं थी नहीं दीन इस्लाम के अंदर वो खुद ही बना बना के लगाई हैं, वो ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी की ना आपकी सहाबा ने कभी की, उनको आज शामिल किया हुआ, वो धड़ल्ले से दीन का नाम दे रहे हैं। तो ऐसे मुसलमानों को भी समझ लेना चाहिए कि अगर वो चाहते हैं इस्लाम के अलावा कोई रास्ता, उसमें उनको बड़ी अट्रैक्शन नजर आती है कि हाँ हम इस तरह से झूम झूम के ऐसे ऐसे करेंगे और बस हमें हाल चढ़ जाएगा और हम गोल गोल घूम घूम के कुछ करेंगे तो वो इस्लाम है, और हम रहबानियत इख्तियार करेंगे तो वो इस्लाम है, या हम और कोई जितनी भी बिदात है उनमें से कोई भी करेंगे तो ये अल्लाह को बड़ी अच्छी लगेगी, तो नहीं, वो कबूल नहीं है, वो कबूल नहीं है। इसी तरह जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरीके दे दिए माशरती जिंदगी के, तलाक के हैं, निकाह के हैं, आपने देखे तलाक के आपने पढ़े हैं सूरह बकरा में, इसी तरह रहन सहन के हैं, इसी तरह इकोनॉमी के हैं, इस तरह बिजनेस के हैं, आपके दस्तरखान के ऊपर उसके हैं खाने पीने के, ये सब तरीके वही जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए, उन्हीं को जो प्रैक्टिस करेगा तो अल्लाह के यहां वो कबूल होंगे, उसके ऊपर अजर मिलेगा, बाकी सब अल्लाह को नहीं चाहिए, उसने रिजेक्ट कर दिए, वो गार्बेज में जाएंगे। ठीक है, तो दीन क्या है, सिर्फ वही है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाए। ठीक है, आज वो कहते हैं आज टेक्नोलॉजी इतनी तरक्की हो गई है, हम कैसे देखे ना वो 1400 साल पहले की बातें, अब उनको कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं, आज सोच बदल गई, रहन सहन बदल गया, आज इकोनॉमीज डिफरेंट हो गई हैं, वो तो जमाने गए, अब कैसे आप कर सकते हैं। तो याद रखिए एक बात, इसका जवाब मैं आज आपको बता देती हूँ, इन जो लोग ऐसा कहते हैं ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैंने कोई एक ऐसी चीज भी नहीं छोड़ी जो तुमको अल्लाह से करीब करती थी और आग से दूर करती थी, मगर मैंने उसको बता दिया तुम्हें, मैंने उसका हुक्म दे दिया, यानी हर वो बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहुंचा दी है जो अल्लाह के करीब करने वाली थी और जहन्नम से दूर करने वाली थी। तो दीन बिल्कुल वाजे है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जहां तक ये सवाल है कि आज कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं, आज कैसे, तो अगर आप दो असूल याद रखेंगे ना तो आपके लिए बड़ी आसानी हो जाएगी। दो असूल क्या है? एक है दीन के सवाब के कामों के या इबादत के कामों के असूल, एक है दुनियावी मामलात के असूल। ठीक है, दोनों अलग अलग हैं और दोनों अपोजिट हैं। इबादात में असूल क्या है, जो सवाब मिलने के काम है उनमें असूल क्या है? सब कुछ हराम है जब तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उस पे हुक्म ना आ जाए, सब कुछ हराम है। मसलन अगर मैं कोई उठ के कहता है ये देखें मेरा पास सुबह को बड़ा टाइम होता है, मैं चार फर्ज पढ़ लेती हूँ, दो फर्ज पढ़ने की बजाय फजर के, तो इसमें क्या कबाहत है, इसमें क्या मसला, क्या आपको क्या मसला है, आपको कोई मसला है? मुझे कोई मसला नहीं है तो आप मुझे पढ़ने देना। तो नहीं, हम कहेंगे आप सबूत लेकर आओ क्योंकि ये दीन का मामला है, इसके अंदर सबूत चाहिए। तो आगे से वो पता क्या कहते हैं, वो आगे से कहते हैं लो तो फिर आप जहाजों में ट्रेवल करते हैं, आप घड़ियां पहनते हैं, आप मैट्रेस पे सोते हैं, इसका बताओ क्या सबूत है, इसका कोई सबूत है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से, तो फिर वो क्यों करते हो? तो इसका जवाब ये है कि देखिए जो मैंने आपको बताया कि जब इबादत देखेंगे तो असूल मैंने आपको बता दिया, जब दुनियावी मामला देखेंगे ना, खाना है, पीना है, रहना है, सहना है, इसमें हर मामला जायज है जब तक शरीयत उसको मना ना करते। असल सारे खाने जायज हैं सिवाय जिनके शरीयत ने आपको बता दिया कि ये नहीं करने, ठीक है? तो उन मामलों में सब चीजें जायज हैं। अब आप कहीं जहाज उड़ाना कहां से इसका सबूत मिलता है, अच्छा अब मैट्रेस पे सोने का सबूत कहाँ मिलता है, गाड़ी चलाने का सबूत कहाँ मिलता है, सारा कुछ जायज है जब तक शरीयत मना ना करते। तो शरीयत इतनी ब्रॉड है, सुभान अल्लाह, इतनी ब्रॉड है कि उसने एक एक स्पेसिफिकेशन नहीं दी। मैंने जैसे आपको कहा लिबास का, ये नहीं कहा तुम ये लिबास पहनोगे ना तो फिर तुम इस्लामी हो और ये पहनोगे तो नहीं इस्लामी, ऐसी निटी क्रिटी में नहीं गया शरीयत। वो उसने एक ब्रॉडर आपको रूल्स दे दिए और ये बता दिए कि सातिर लिबास होना चाहिए। मिसाल के तौर पर मैं एक लिबास की बात करती हूँ, सातिर लिबास होना चाहिए, ऐसे टाइट ना हो, ऐसा ना हो जिससे अंदर से आपके मतलब आपकी बॉडी की शेप पता चले, ऐसा ना हो जिसमें ये, तो उसको को रूल्स बता दिए, कुछ रूल्स गिनवा दिए। अब जो लिबास उसके ऊपर पूरा उतरता होगा आप उस पर कर सकते हैं। इसी तरह आपको रूल्स बता दिए, सवारी के ये रूल है, इस चीज के ये रूल है, आप उन रूल्स को देखते हैं, उस रूल्स के अंदर जो चीजें आती हैं वो ठीक है, ठीक है? आपको कह दिया, अब आप कहेंगे एक चीज पकड़ के बैठ जाए, अच्छा ये काम कारोबार करना ठीक है या नहीं, आपको बता दिया गया भी काम कारोबार के अंदर ये काम कारोबार है जो मना है, जिसमें सूद है, जिसमें बेईमानी है, जिसमें ये है, जिसमें ये, कुछ चीजों आपको रूल्स बता दिए। अब अगर वो उसके अंडर आता है तो वो हराम हो गया, वरना तो नए नए कारोबार आते रहेंगे, नई नई चीजें आती रहेंगी, एक एक चीज को थोड़ी शरीयत बैठ के गिनेगी कि क्यामत तक आने के लिए क्या था वो, अब पता नहीं कल को रॉकेट के अंदर लोग चलने शुरू हो जाएं, पता नहीं क्या क्या आ जाए। तो शरीयत ने जनरल रूल्स दे दिए, अब आप दुनिया के अपने मामला उनके मुताबिक देख लें। अब आज आप कहें वो कहाँ मना है कि गंदी फिल्में नहीं देखनी, गंदी फिल्में तो उस वक्त होती ही नहीं थी, फिल्म ही नहीं होती थी तो कैसे, लेकिन शरीयत ने आपको क्या बता दिया कि फहाशी के करीब भी ना जाना, वला तकरबुल फवाहिशा मा ज़हर मिनहा वमा बतन, चाहे जाहिरी हो चाहे छुपी भी हो, फहाशी के करीब भी नहीं जाना। तो फहाशी में जितनी, चाहे वो रिसाले हैं, चाहे वो फिल्में हैं, चाहे वो कोई लिटरेचर है, चाहे वो कोई पिक्चर्स हैं, चाहे वो कोई चीज है, चाहे बिलबोर्ड्स पे हैं, चाहे वो कहीं पे भी हैं, चाहे लाइव हैं और चाहे किसी कंप्यूटर पे कोई वर्चुअल फॉर्म में है, हर तरह की फवाहिश को मना कर दिया, चाहे वो गैदरिंग्स हैं, चाहे वो किसी तरह की भी चीज है। तो आपको एक ब्रॉडर रूल दे दिया गया ना, तो इस तरह समझें बात को। ये इन इनकी बातों में उलझने की जरूरत नहीं कि हाँ ये तो पता नहीं ठीक ही कह रहे हैं, आपको जवाब आना चाहिए अब आप कुरान के स्टूडेंट हैं कि दुनियावी मामलात में हमने क्या देखना, मना होने की दलील देखनी, और दीन के मामले में हमने देखना कि इसका सबूत कहां मिलता है। वो कहते हैं हमने, अब आप बताएं ये कहाँ पे मना है, कोई मना है ये कि हम शबरात ही जो है वो लैलतुल कद्र है, हम इसकी इबादत करेंगे, ये कोई मना है? हम तो ये कुछ और भी कोई भी और बिदात है वो करेंगे। अब ये कहां मना, मना नहीं, आप ये देखेंगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया, मेराज का हम रोजा रखते हैं, आपको क्या है, रोजा रख रहे हैं हम मेराज का तो आपको क्या है इसका, हम मेराज की रात को भी लैलतुल कदर की तरह समझ रहे हैं तो आपको इससे क्या है, इबादत ही कर रहे हैं ना। बात ये नहीं है, बात ये कि आपने उसको जो सिग्निफिकेंस दी, क्या इसका कोई सबूत है, ये बात है। तो फॉर्मूला बता दिया, जैसे होता है ना मैथ्स जो लोग पढ़े हुए हैं उनको पता होगा कि एल्जेब्रा वगैरह ये इनके अंदर फॉर्मूला एक बता दिया जाता है, फिर उसके बाद आप हर अपने जो आपके पास सम्स आते हैं, जो जो आपके पास प्रॉब्लम्स आते हैं उसको उस फॉर्मूला लगा के उसके मुताबिक हल करते हैं। इस तरह दीन इस्लाम में हमें ये फॉर्मूला दे दिया, अब आप हर चीज को फॉर्मूला लगाएंगे और चेक कर लेंगे। ठीक है, बात समझ आ गई। अच्छा एक ये जो बात कहते हैं ना कि किसी को ना गलत को सब ठीक है, सब अच्छी है, हम देखें हम किसी को बुरा नहीं कहते, हम किसी को ये नहीं कहेंगे कि हम किसी के पीछे पड़ जाए, उनको गालम गलोच करने लगे, उनको ये कर नहीं, मगर हम जरूर बताएंगे कि ये गलत है, चाहे किसी को बुरा लगे उसको कहेंगे हिकमत के साथ ही, अगर वो गलत है ऐसा नहीं करेंगे कि हम नाइस बनने के चक्कर में कि हमें सब समझ लें कि ये कितने ब्रॉड माइंडेड है, इस चक्कर में हम सब कोई कह देंगे सभी तुम अच्छे हो, जबकि हम आपका कुरान कह रहा है, अभी आगे देख लेना आपका कुरान क्या कहता है कि जो कुफर के ऊपर हो, जो इस रास्ते से हटा हुआ, वो कह रहा है कुरान कहता है वह हुआ फिल आखरती मिनल खासिरीन, तो आप कह रहे हैं कि नहीं तुम सारे अच्छे हो, तुम सब ठीक हो, कुरान कहता है जिन लोगों ने कुफर किया उनके अमाल ऐसे हैं जैसे सराब है, मेराज होता है ना वो दूर से क्या नजर आता है पानी, और जब करीब जाते हैं तो वहां पे कुछ भी नहीं, वो भी अब समझते हैं कि हम बिल्कुल ठीक कर रहे हैं और वहां पे पहुंचेंगे आखिरत में तो कुछ भी नहीं होगा, लेकिन हम उनको तसल्लियां देते हैं फिक्र ना करो तुम भी बहुत अच्छे, क्योंकि हम बहुत ब्रॉड माइंडेड हैं। ये प्रूव करते करते अपने कुरान को ही कॉन्ट्रोडिक्ट कर दिया, कैफ यहदिल्लाहु कौमन कफरू बादा ईमानिहिम, कैसे अल्लाह हिदायत दे ऐसी कौम को जो कुफर करे बाद ईमान के, कैसे हिदायत दे का मतलब ये है कि क्यों अल्लाह हिदायत दे, क्यों वाय, कि जो मान लेने के बाद फिर उसके बाद इनकार कर दे। पहले सबसे पहले इसके अंदर कौन आते हैं, यहूदो नसारा, देखिए ना मान गए हैं, आप इससे अंदाजा लगाएं कि हजरत सफिया जो बाद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जौजा बनी उम्महातुल मोमिनीन में से हैं, तो ये जाहिर है यहूदी खानदान से थी, तो वो बताती हैं बाद में कि इनके वालिद हुई बिन अख्तब बहुत बड़ा सरदार था यहूद का, और चचा उनकी आपस की कन्वर्सेशन इन्होंने बाद में नरेट किया, तो उन्होंने बताया कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ लेकर आए तो चचा मिलके आया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और वापस आके कहने लगा, बताया कि भाई मैं इस तरह मिलके आया, तो वालिद ने पूछा कि क्या समझ आया फिर तुम्हें, तो कहने लगे वो ही है का मतलब क्या, वो ही है जिसका हम इंतजार था, तो पूछा फिर क्या इरादा है, मशवरा हो रहा है आपस में, तो जवाब क्या मिलता है, मुखालफत ही करनी है बस मुखालफत, ये उन्होंने बताया था सफिया ने, तो इन लोगों को पता था, मैंने आपको पहले भी बताया था जब ये सूरह शुरू हो रही थी कि किस तरह इन लोगों ने जो आ रहे थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास उनको भी मालूम था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये जो नजरान का वफद था कि ये सच्चे रसूल हैं, और आपस में भी एक दूसरे को बताते थे कि हाँ ये ठीक है लेकिन हमने मानना नहीं है, तो कैफ यहदिल्लाहु कौमन, क्यों क्यों हिदायत देगा अल्लाह ऐसी कौम को जो कुफर करे मान लेने के बाद, उनको समझ है उनको पता है, वह शाहिदु अन्ना रसूल हक, और उन्होंने गवाही दी है कि रसूल बरहक है, वह जाअहुमुल बय्यिनात, और उनके पास रोशन निशानियां आई हैं, रोशन निशानियां मतलब क्या, उनके पास प्रूफ्स हैं, उनके पास कुरान आया है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात के बारे में, उनकी अपनी किताबों के अंदर है निशानियां, फिर क्यों अल्लाह उनको हिदायत दे जो खुद ढीठ बन जाए, जो खुद ही जिद में आ जाए कि मैंने मानना ही नहीं है, अल्लाह फिर उसको जबरदस्ती नहीं हिदायत दे देता, यानी हिदायत तो चलो ऐसा बंदा है ना जिसको पता ही नहीं है बेचारे, पता नहीं था तो उसको चलो पता चला तो फिर वो मान लेता है, एक बंदा उसको पता है लेकिन बगयम बैना हो बस जिद्दम जिद्दा, हमने नहीं मानना इनको, हमारे अंदर से नहीं आई है, तो फिर उनको क्यों अल्लाह हिदायत दे, वल्लाहु ला यहदिल कौम अज़्ज़ालिमीन, अल्लाह जालिमों को हिदायत नहीं देता। जालिम वो होता है जो हकदार को उसका हक ना दे। अब जिसको पता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं, आप जो हिदायत लाए वो अल्लाह की तरफ से, फिर भी आपका इनकार करे, तो उसने जुल्म किया ना। आपका हक था कि आपको मानना जाता। अब फिर ऐसे इंसान के लिए ना हिदायत के दरवाजे बंद हो जाते हैं। नंबर टू, इस आयत में कौन लोग शामिल हैं ये भी लिख लें आप। एक तो ये यहूदो नसारा हो गया, पिछली आयत का भी मैंने आपको बताया कि यहूदो नसारा भी मुराद है और ऐसे मुसलमान भी। इस आयत में भी यहूदो नसारा भी मुराद है और ऐसे मुसलमान भी उनमें शामिल है जो कलमा पढ़ लें, मान लें कि आप सच्चे रसूल हैं, अल्लाह वहदहू ला शरीक है, मगर इसके बावजूद नबी के लाए हुए दीन का इनकार करे। जैसे कलमा तो पढ़ा हुआ है, मगर उसके बाद क्या है, हर मामले में अपनी एक नई सोच है, अपनी एक नई बातें निकाल लेना जो ना कुरान में है ना हदीस में है। और जबकि उसको पता है कि कुरान क्या है हदीस क्या है, फिर भी धड़ल्ले से इनकार करता है, कहता मैं नहीं मानता, मैं इस चीज को नहीं मानता, मैं उसको नहीं मानता। खुद ही आयात के अपने ही मफहूम निकाल लेना। मैंने आपको पहले भी बताया था, लोग इसी कुरान से ही गुमराह भी होते हैं, क्योंकि वो आयतों में से ही अपने जो उनको पसंद होता है ना उसके मुताबिक माने निकालते हैं, कहीं बाहर से नहीं निकालते हैं, इन्हीं से निकालते हैं। तो इसको ट्विस्ट करना, ये आजकल आपको पता है बीमारी बहुत चली हुई है। हर दूसरे तीसरे बंदे के बारे में आपको सुनने में क्या आता है कि वो इस चीज का इनकार करता है, वो हदीस का इनकार करता है, फलां चीज का इनकार करता है, लेकिन है बहुत नॉलेजेबल, बहुत पढ़ते हैं, किताबें इतनी पढ़ते हैं, तो उनको तो उनकी किताबों ने, उनके इल्म ने गुमराह कर दिया। फिर पिछले दिनों सुनने में आया कि कोई साहब है, बहुत पढ़ते हैं, बहुत वो हैं, लेकिन क्या है, वो कहते हैं कि हदीसें इन्होंने खुद ही जमा कर ली, खुद ही उसके बाद फिर कह दिया, इतनी लाखों जमा करके फिर कह दिया नहीं जी ये तो इनमें से सही नहीं, और मैं तो सिर्फ वो अहदीस मानता हूं जो कुरान के मुताबिक है, बाकी सबको मैं रिजेक्ट करता हूं। कहते सारी खुद ही बनाई है ना कोई क्या, और पढ़े हुए बहुत हैं। इसी तरह एक और साहब, उनकी तो बाकायदा बहुत बड़ी लाइब्रेरी थी, लेकिन उसके बावजूद वो लोगों से क्या बहस करते थे, बहुत पढ़ते थे वो भी, कहते थे कि ये जो कुरान में है ना सारी बातें, ये सब कहानियां हैं, सिर्फ हमें सबक बताने के लिए बताई गई है, ऐसा कुछ हुआ नहीं है, सब कहानियां। और आप उनका पढ़ाई लिखाई देखें तो आप हैरान हो जाए। आज आप देखें बाज ऐसे हैं वो तुले में है कि कब्र का अजाब कुछ है ही नहीं है, और पूछें तो नहीं, बहुत इल्म वाले हैं, इतने इल्म वाले हैं, उनके साथ आप बात करने लगे तो बहसें इतनी करते हैं, यहां से कोट करेंगे हदीस, वहां से वो कोट करेंगे, ये देखो ऐसे, वो देखो ऐसे। तो यहूदो नसारा को तो क्या कहना, अपने मुसलमान ऐसे लोग हैं जो अल्लाह और रसूल की बात को नहीं मानते, उसका इनकार करते हैं। अभी मैंने आपको जो बताया ईसा अलैहि सलाम के आने की, तवातुर से अहदीस है, तुम किस किस का इनकार करोगे, फिर भी धड़ल्ले से कहते नहीं मानते। तो ऐसे इंसान के लिए फरमाया वल्लाहु ला यहदिल कौम अज़्ज़ालिमीन, अल्लाह ऐसे जालिमों को हिदायत नहीं देता, क्योंकि उन्होंने ईमान के बाद कुफर किया, उन्होंने जिस चीज की गवाही दी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे रसूल हैं, इसके बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर बातें बनाते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखें, जो जो हमने अभी बात की ना, अल्लाह ताला हमें हिदायत अता फरमाए। ये जो हमने बात की ना, ला तुमिनुन्ना बिही वला तंसुरुन्ना, इनकी मदद करनी है आपने। आज क्या मदद करेंगे अपने मुसलमानों में, शर्म आती है ये बात कहते हुए कि अपने मुसलमानों में ऐसे मुसलमान हैं जो खड़े होके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात के ऊपर एतराजात करते हैं, ऑब्जेक्शंस हैं उनको, मदद इन्होंने क्या करनी है। पहले तो अपने दिलों को तो साफ करो नबी की जात से, कभी उनकी शादियों के बारे में, कभी उनकी किसी कोई चीज को उठा के शुरू हो जाते हैं, कोई कोई ना कोई निकाले ही रखते हैं शोशा, ऐसे ही उन्होंने क्यों किया था, फिर उन्होंने ये क्यों किया, फिर उन्होंने वो क्यों किया। और ये नहीं कि वो कोई जानने की उनको जरूरत होती है, नहीं, सिर्फ एतराज। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी क्या है? मेरे ख्याल में जिन लोगों ने सीरत नबी का कोर्स किया है उनको तो अच्छी तरह पता होगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिंदगी कैसे गुजारी है और कैसे थे आप। और ये सोच लें कि जिन्होंने ये कोर्स नहीं लिया था, जब ये सब्जेक्ट नहीं पढ़ा था, आपको कितना पता था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात के बारे में, उनकी जिंदगी के बारे में? खुद बताएं कितना नॉलेज था आपको, सिवाय चंद एक उहद बदर, इनके अलावा हिजरत, इसके अलावा कुछ ज्यादा नहीं पता था। सही है ना ये बात? लेकिन इसी तरह और भी बहुत सारे मुसलमान हैं जिनको कोई पता नहीं है। वो क्या मदद करेंगे इस मिशन में, क्या काम आएंगे? वो तो फिर ऐसे लोगों की बातों में ही आ जाएंगे जो फिर इतराजात करते हैं। अच्छा, उससे सुन लिया तो फिर उस खुद भी सोचने लग गए, हाँ वैसे वाकई ये बात तो सही है, उसने ऐसे कहा था। क्योंकि खुद नॉलेज नहीं है ना, खुद पता ही नहीं है। तो ये वो लोग हैं जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं, शाहिदु अन्ना रसूल हक, गवाही देते हैं, कलमा पढ़ते हैं, इनके पास रोशन निशानियां आ गई, कुरान इनके पास आया हुआ, फिर उसके बाद भी कुफर करते हैं। और कुफर, देखिए कुफर ये होता है जैसे अल्लाह के किसी हुक्म को कहना मैं नहीं मानता। मसलन नमाज है, एक होता है कि मेरे से नहीं पढ़ी जाती, या मेरे से नहीं उठा गया, या मेरे से कजा हो गई, या ये अलग एक बात है। एक बंदा कहे मैं नहीं मानता नमाज को, ये नमाज फर्जी नहीं है, अल्लाह को, एक ने कहा अल्लाह को जरूरत ही नहीं हमारी इबादत की, हम क्यों नमाज पढ़े फिर, तो मैं नहीं मानता नमाज को। अब मुझे बताएं, जो ये कहना होता है ना मैं नहीं मानता इस अल्लाह के हुक्म को, ये कुफर है। अब वो पता है ये कुफर है, एक आयत का भी कुरान में से इनकार कर देना कुफर है। अब पढ़ते हैं जितने मर्जी आप नमाजें पढ़ रहे हैं, या सॉरी जितने मर्जी आप कलमे के दावे कर रहे हैं, हम जो कलमा पढ़ने वाले हैं, लेकिन ये कुफर है। तालीमात को जो इस्लाम की हैं उनको सोच समझ के और फिर उसके बाद उनको इनकार करना, उन पे ट्रस्ट ना करना, उनका इतबार ही नहीं है आपको, तो ये फिर कुफर हो जाता है। ये कह देना कि इस कुरान पे अमल करना आज के दौर में मुमकिन ही नहीं है, ये कुफर है, ये मैं मानता ही नहीं हूं, ये कुफर है। ऐसे लोगों के लिए हिदायत के रास्ते बंद हो जाते हैं। उलाइक जज़ाउहुम अन्ना अलैहिम लानतल्लाहि, ऐसे लोगों की जजा ये है कि इनके ऊपर तीन लानते हैं। क्यों इनके ऊपर लानते हैं? इन्होंने समझा, ये ऐसे नहीं था कि ये जाहिल थे, इन्होंने जैसे वो कहते ना बहुत किताबें पढ़ते हैं, बहुत पढ़ा हुआ है इन्होंने। क्या पढ़ा हुआ है? ये पढ़ा हुआ है कि पढ़ के उसके बाद इसी चीज को निगेट करने लगे और अपने आप को बहुत बड़े मुसलमान कहते हैं। ऐसे लोग और या जो भी यहूदो नसारा, उन्होंने पहचान लिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, उन्होंने पहचान लिया और मान लिया और फिर उसके बाद भी इनकार किया, और निशानियां उनके पास आई और उन्होंने उसके बाद भी नहीं इनको समझा, ऐसे लोगों के लिए, या ये भी उनके अंदर आ जाते हैं जो मुर्तद हो गए, काफर उबादा ईमान ही है, ईमान लाने के बाद मुर्तद हो गए, उनके लिए ये सजा है कि अल्लाह की लानत है ऐसे लोगों के ऊपर। अल्लाह की लानत का मतलब क्या है? अल्लाह की रहमत से दूर, और जो अल्लाह की रहमत से दूर हो गया, हमारे पास तो एक जाए पनाह ही अल्लाह की रहमत है, उस अल्लाह की रहमत की चादर में आके ही हमारी कहीं निजात हो सकती है, कोई खलासी हो सकती है, वरना उसकी रहमत ना हो तो फिर तो सिर्फ जहन्नुम ही है और कुछ नहीं, क्योंकि जन्नत अल्लाह की रहमत है। जिस अल्लाह की रहमत से दूर हो गया उसकी तो बख्शिश भी नहीं है, उसके लिए तो जन्नत भी नहीं है, उसके लिए तो कुछ भी नहीं है। और जो दुनिया में अल्लाह की रहमत से दूरी हो गई, तो ये अल्लाह की रहमत ही है कि हम चल फिर रहे हैं, अल्लाह की रहमत ही है कि वो हमें बर्दाश्त कर रहे हैं। तो लानत है अल्लाह की, और उसके फरिश्ते भी लानत भेजते हैं उसके ऊपर, और लोगों में भी अजमाइन सब के सब उस पर लानत भेजते हैं। यानी दुनिया में मोमिन लानत भेजते हैं, और आखिरत में तो क्या होगा, जहन्नम के अंदर एक दूसरे के ऊपर लानत भेजेंगे। तो तीन लानतें यहाँ पे इकट्ठी हो गई, अल्लाह की लानत ही काफी थी, अल्लाह ने ही लानत कर दी तो बहुत। और अल्लाह की लानत और भी किसी पे है या सिर्फ इन पे? कोई पढ़ा है आपने अल्लाह की लानत और किस पे होती है? लानतुल्लाहि अलल कादिबीन, कुरान कहता है अल्लाह की लानत है झूठों पे। फासिकों पे, काफिरों पे, तो झूठ के बगैर तुम्हारी जिंदगी नहीं। अल्लाह में माफ कर देना। तो लानत जो होती है ना, ये एक मामूली चीज नहीं होती। हम इतना इसको मामूली समझते हैं और यहाँ पे देख के सोचते हैं अल्लाह ने लानत कर दी तो हम भी कर देते हैं लानत किसी पे, तो क्या फर्क पड़ गया। नहीं, जब अल्लाह ने लानत की है ना तो हुज्जत तमाम करने के बाद की है, क्योंकि जब उनको पता भी चल गया, उनके सामने है, फिर वो इतने ढीठ हैं, जिद में आए, मैं नहीं मान रहे, तब अल्लाह की लानत आई है। ठीक है, तो हम ऐसे नहीं एक दूसरे के ऊपर लानते भेज सकते कि लानत के अल्फाज बोलते रहे और हमें कोई फर्क नहीं पड़े। हदीस में आता है जब कोई शख्स दूसरे पर लानत करता है तो वो लानत आसमानों को चढ़ जाती है और आसमान के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, और लानत को आसमान पे चढ़ने नहीं दिया जाता, वो रास्ता ढूंढती फिरती है। और अल्लाह ताला इल्म होने के बावजूद फरिश्तों से सवाल करता है कि ये क्या मामला है, किसने किस पे लानत की है। फरिश्ते बताते हैं या अल्लाह फलां ने फलां पे लानत की है। अल्लाह ताला फरमाते हैं अगर जिस पे लानत की गई है वो उसका मुस्तहिक था, वो इसी लायक था कि उसके ऊपर लानत की जाती, तो उस पर लानत डाली जाए, उस पर लानत डाल दो। और अगर वो इसका मुस्तहिक नहीं है तो वापस कहने वाले पर डाल दो। तो वो लौटती जरूर है, उसके लिए आसमानों के दरवाजे बंद है, वो लौटती जरूर है। अब यहाँ तो कहने वाले पे आएगी, यहाँ पे जिसको कहा गया वो अगर इसका मुस्तहिक था तो उसके पर आएगी। और हमारा तो हाल ये है कि माएं बच्चों को कहती हैं फिटे मुंह। फिटे मुंह क्या होता है पता है आपको? मुझे ये बोलना पड़ रहा है इसलिए क्योंकि शायद लानत से तो समझ ही नहीं आता हमें। हम कहते ना हम तो कभी लानत करते ही नहीं। औरतें जहन्नुम में सबसे ज्यादा जाएंगी, वो लानतें बहुत करती हैं, उनका एक रीजन ये है। तो क्या होता है? फिटकार हो तेरे मुंह के ऊपर। फिटकार क्या होती है? ये लानत ही तो है। वो अगर इसका मुस्तहिक नहीं होगा तो कहने वाली भी आ जाएगी। तो अपने आप को हम क्या बतुआ दे रहे हैं? ये अल्लाह करे कि अल्लाह की रहमत से दूर हो जाए। आप सोचेंगे कितना आराम से ये अल्फाज कह दिए जाते हैं। तो हमें यहां पे बताया गया कि ऐसे जालिमों के ऊपर अल्लाह की, फरिश्तों की और लोगों की लानत है, खालिदीन फिया, इस लानत में वो हमेशा रहने वाले। ला युखफ्फफु अन्हुम अलअज़ाब, उनसे अजाब हल्का नहीं किया जाएगा, वला हुम युनज़रून, और ना ही वो मोहलत दिए जाएंगे। हम सूरह आगे पढ़ते हैं ना, 30वें पारे में, फलन नज़ीदकुम इल्ला अज़ाबा, उनका ज्यादा नहीं होगा सिवाय अजाब के, एक अजाब ही चीज होगी जो बढ़ती ही जाएगी। एक दिन की भी वो कमी मांगेंगे ना कि एक दिन भी हमें ब्रेक दे दी जाए, एक दिन भी हमें छुट्टी दे दी जाए इस अजाब से, तो उनकी ये भी ख्वाहिश पूरी नहीं होगी। ला युखफ्फ खफी यानी तखफीफ होगी नहीं, बढ़ेगा, कमी नहीं होगी, कम नहीं किया जाएगा। कोयले भी जल जल के, बाद लोगों ने इसी से कह दिया लेकिन जी आग भी जल जल के एक दिन बुझ जाती तो जहन्नम की आग भी एक दिन बुझ जाएगी। भाई तो दुनिया की आग की तरह थोड़ी है, कोयले जलते जाते हैं वो एक दिन बुझ जाते हैं, नहीं वो ऐसी आग नहीं है कि जैसे आपकी दुनिया की आग है। वो कहेंगे कि हमें थोड़ी देर के लिए, जरा देर के लिए, कोई लम्हे के लिए हमें ब्रेक दे दो, जरा लम्हे के लिए हमें सांस तो लेने दो, फिर हमें मारना दोबारा, फिर हमें दोबारा इसके अंदर। उनको अगर पानी पीने के लिए ले जाया जाएगा तो वो उससे बड़ा अजाब होगा। वो सोचेंगे हमारी यहां से छुटकार हो जाएगी, हम पानी पिए, हमें प्यास हमारी खत्म हो, वो भी सेल्फ एक अजाब है। जो उसको मार का अजाब है वो इटसेल्फ एक अजाब है। अगर दुनिया में कोई हो तो वो तो मर जाए इस सारे टॉर्चर से, मगर मौत नहीं है वहां। सुम्मा ला यमूतु फीहा वला यहया, तो इतना सख्त अजाब है उसके लिए जो समझ रखता है फिर उसके बाद इनकार करता है। वो मोहलत नहीं दिए जाएंगे, नो चांस फॉर देम, कोई मौका नहीं मिलेगा दोबारा।